एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते।
आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है और सच पूछे तो हमारे अंदर भी है।
हम बात कर रहे हैं रासायनिक तत्वों की,
है ना? वो बुनियादी चीजें जिनसे सब कुछ बना है।
हाँ बिल्कुल।
और इस सफर पर हमारे साथ है फिलिप बोल की किताब द एलिमेंट्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और जैसा आपने कहा, ये कोई सूखी लिस्ट नहीं है, ये कहानी है इस विचार की कि तत्व आखिर हैं क्या।
सही। और ये आज क्यों जरूरी है? मेरे ख्याल से इसलिए कि ये समझाती है कि दुनिया असल में बनी किस चीज से है।
और वो जो कनेक्शन है हमारा तारों से, हम तारों की धूल है वाली बात।
हाँ वो भी, और वो आवर्त सारणी जो स्कूल में बस रटते थे उसके पीछे का आइडिया समझना, वो तो कमाल का है।
बिल्कुल। और फिलिप बॉल इस कहानी को बताने के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं। जाने माने ब्रिटिश विज्ञान लेखक हैं, फिजिक्स में PhD है
और नेचर पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, है ना?
हाँ काफी समय तक। उनकी खास बात यह है कि वो मुश्किल साइंस को भी ना इतिहास और फिलॉसफी के साथ जोड़कर सुनाते हैं।
अच्छा,
तो विज्ञान सिर्फ तथ्य नहीं रह जाता, एक सफर बन जाता है, इंसानी जिज्ञासा का सफर।
तो मतलब उसके सिर्फ क्या नहीं बताते बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा जोर देते।
बिल्कुल। कैसे हमारी समझ बनी, कैसे विचार बदले, यही सब। और उनकी भाषा भी बहुत सहज है।
तो ये तत्वों की कहानी के लिए तो एकदम परफेक्ट है। इसमें तो सब कुछ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इतिहास भी।
हाँ। तो चलिए किताब पर आते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? देखिए, जैसा हमने कहा, ये 118 तत्वों की लिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। ये किताब इस सवाल को देखती है कि तत्व का मतलब क्या है और ये मतलब कैसे बदला है।
कहां से कहां तक?
अरे, पुराने यूनानी दार्शनिकों से लेकर आज के साइंटिस्ट तक, कैसे ये आइडिया इवॉल्व हुआ है।
और किताब का मुख्य तर्क क्या है? मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं?
मूल बात ये है कि तत्व सिर्फ लैब की चीज नहीं है, वो धागे हैं जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ते हैं, दूर के तारों से लेकर हमारे अपने सेल्स तक।
वाह।
तो तत्वों की कहानी ही असल में विज्ञान की कहानी है। हमारी जिज्ञासा, हमारी खोजें, हमारी समझ का बदलना, सब कुछ।
और इसमें आवर्त सारणी कहाँ फिट होती है?
आवर्त सारणी एक एक मील का पत्थर है इस कहानी में। बॉल उसे सिर्फ चार्ट नहीं मानते, वो उसे एक नक्शा कहते हैं।
नक्शा किस चीज का?
ब्रह्मांड के बनने का, इंसानी खोज का, टेक्नोलॉजी का, सब चीजों का। वो कहते हैं हर तत्व की अपनी कहानी है। और किताब का मकसद भी यही है कि कोई भी इसे पढ़ सके, समझ सके। कोई खास वैज्ञानिक बैकग्राउंड जरूरी नहीं।
सुनने में तो ये सफर बड़ा रोमांचक लग रहा है। शुरू कहाँ से होता है?
कहानी शुरू होती है कोई 2500 साल पहले, प्राचीन यूनान। वो चार तत्वों वाले विचार, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल।
हाँ हाँ वो तो सुना है।
फिर कहानी आगे बढ़ती है कीमियागरों तक, वो जो सोना बनाने की कोशिश करते थे।
अच्छा, कीमियागर, उनका क्या रोल था इसमें?
हाँ, सोना बनाना तो एक बात थी, लेकिन उस चक्कर में उन्होंने कई लैब टेक्निक्स ईजाद की, पदार्थों को समझने की कोशिश की। अनजाने में ही सही, पर रसायन विज्ञान की नींव रखी उन्होंने। फिर आता है लवोजिए का दौर, वैज्ञानिक क्रांति, जब तत्व की पहली वैज्ञानिक परिभाषा दी गई।
और फिर मेंडलीव, आवर्त सारणी वाले।
हाँ, मेंडलीव ने कैसे उन बिखरे तत्वों में एक पैटर्न खोजा, और कमाल तो ये कि अनदेखे तत्वों के बारे में बता भी दिया।
सच में?
हाँ। और फिर कहानी और आगे बढ़ती है 20वीं सदी, परमाणु के अंदर के राज खुले, रेडियो एक्टिविटी,
जिससे तत्व की परिभाषा फिर बदल गई।
बिल्कुल। फिर किताब हमें तारों के अंदर ले जाती है जहां ये तत्व बनते हैं, और आखिर में मानव निर्मित सुपर हैवी तत्व और भविष्य की बातें।
वाह, मतलब बिग बैंग से लेकर भविष्य तक का पूरा सफर, कमाल है। चलिए अब थोड़ा डीप चलते हैं। सबसे पहला सवाल, ये तत्व आए कहां से? वो जो कहते हैं हम तारों की धूल हैं, इसका मतलब क्या है?
हाँ, ये बड़ी गहरी बात है, और सिर्फ कहने की बात नहीं, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। देखिए, कहानी शुरू हुई बिग बैंग से, करीब 13.8 अरब साल पहले। तब शुरू के कुछ मिनटों में क्या बना? सिर्फ सबसे हल्के तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम, थोड़ा सा लिथियम भी शायद, बस।
तो फिर बाकी सब, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, ये सब कहां से टपके?
ये सब बने तारों के अंदर। तारे क्या है? समझिए कि प्रकृति की बड़ी बड़ी परमाणु भट्टियां।
परमाणु भट्टियां?
हाँ, उनके कोर में इतना जबरदस्त प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि हल्के तत्व जुड़कर भारी बनते जाते हैं। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं।
अच्छा,
हाइड्रोजन से हीलियम बना, फिर हीलियम से कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसे करते करते लोहे तक।
लोहे तक क्यों? सोना, चांदी, यूरेनियम जैसे भारी तत्व भी तो हैं।
सही सवाल। लोहे से भारी चीजें बनाने के लिए और भी ज्यादा, मतलब भयंकर ऊर्जा चाहिए। वो मिलती है जब कोई बहुत बड़ा तारा फटता है, सुपरनोवा जिसे कहते हैं।
ओ, सुपरनोवा विस्फोट में।
हाँ, उस धमाके में इतनी जबरदस्त एनर्जी और न्यूट्रॉन निकलते हैं कि लोहे से भी भारी तत्व बन जाते हैं
और फिर वो सब बिखर जाते हैं।
बिल्कुल, वो सुपरनोवा उन सारे बने बनाए तत्वों को अंतरिक्ष में फैला देता है और फिर अरबों साल बाद वही धूल और गैस
नए तारे और ग्रह बनाते हैं।
हाँ, और उन्हीं ग्रहों पर जीवन। तो हमारे शरीर का हर कार्बन, हर ऑक्सीजन, हर लोहे का एटम सच में किसी तारे के दिल में पका है या किसी सुपरनोवा में बना है। हम सचमुच स्टारडस्ट हैं।
ये सोचना ही कितना अद्भुत है। हमारा वजूद सीधे कॉस्मोस से जुड़ा है। अच्छा, ये तो ही विज्ञान की बात। इससे पहले लोग क्या सोचते थे? वो यूनानी तत्व।
हाँ, वो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, वो असल में आज के केमिकल एलिमेंट जैसे नहीं थे। वो ज्यादातर फिलोसॉफिकल आइडिया थे। गुणों की तरह, सूखा, गीला, गर्म, ठंडा, दुनिया को समझने का एक तरीका।
लैब में टेस्टेड नहीं?
नहीं नहीं, वो एक तार्किक ढांचा था। कीमियाघरों ने थोड़ा आगे बढ़ाया। उन्होंने चीजों के गुणों से सिद्धांतों को जोड़ने की कोशिश की और हाँ, लैब टेक्निक्स विकसित की जो बाद में बहुत काम आई।
तो ये सब शुरुआती कदम थे। असली मोड़ कब आया? जब तत्व की वैज्ञानिक परिभाषा बनी।
वो आया 18वीं सदी में एंटनी लावोजिए के काम से। उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता भी कहते हैं।
अच्छा, उन्होंने क्या किया?
दो बड़ी चीजें। एक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में नापतौल पर बहुत जोर दिया,
प्रिसिजन।
दूसरा, उन्होंने तत्व की पहली वैज्ञानिक परिभाषा दी।
क्या थी वो परिभाषा?
सीधी सी बात, तत्व वो चीज है जिसे किसी ज्ञात रासायनिक तरीके से और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये प्रयोग पर आधारित थी, अटकलों पर नहीं। यहीं से केमिस्ट्री सही मायनों में साइंस बनी।
तो लावोजिए के बाद तो फिर तत्वों की खोज तेज हो गई होगी, फिर उनको अरेंज करने की दिक्कत आई होगी।
बिल्कुल, 19वीं सदी तक तो काफी सारे तत्व पता चल चुके थे। अब वैज्ञानिक उनमें कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था ढूंढ रहे थे। कुछ कोशिशें हुई भी,
लेकिन असली काम मेंडेलीव ने किया।
हाँ, दिमित्री मेंडेलीव, रूसी केमिस्ट, 1869 में, उनकी आवर्त सारणी।
हाँ हाँ, पीरियोडिक टेबल, क्या खास था उसमें?
मेंडेलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से लगाया और देखा कि उनके गुण एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होते हैं, पीरियोडिसिटी। लेकिन असली कमाल तो आगे है। मेंडेलीव की जीनियस सिर्फ अरेंजमेंट में नहीं थी, वो थी भविष्यवाणी में।
भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी?
उन्होंने अपनी टेबल में खाली जगहें छोड़ी उन तत्वों के लिए जो तब तक खोजे नहीं गए थे।
अच्छा।
और सिर्फ जगह नहीं छोड़ी, उन्होंने बताया कि वो अनदेखे तत्व कैसे होंगे, उनका रंग, रूप, घनत्व, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, सब कुछ, और वो भी एकदम सटीक।
ये तो कमाल है।
हाँ, बाद में जब गैलियम, जर्मेनियम जैसे तत्व मिले तो वो हूबहू वैसे ही निकले जैसा मेंडेलीव ने कहा था। इसने पीरियोडिक टेबल को सिर्फ एक लिस्ट से पदार्थ का नक्शा बना दिया।
वाकई विज्ञान की ताकत का जबरदस्त उदाहरण। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? क्या ये आइडिया कि तत्व तोड़े नहीं जा सकते हमेशा सही रहा?
नहीं, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं की शुरुआत में कुछ ऐसी खोजें हुईं जिनसे ये आइडिया हिल गया। सबसे बड़ी थी रेडियो धर्मिता की खोज।
रेडियो एक्टिविटी?
हाँ,
बिकेरेल और क्यूरी वाला काम।
हाँ, उन्होंने देखा कि यूरेनियम जैसे कुछ भारी तत्व स्टेबल नहीं है, अस्थिर है।
अस्थिर मतलब?
मतलब उनके परमाणु अपने आप टूटते हैं, बदलते हैं और दूसरे तत्वों के परमाणु बन जाते हैं, तत्वांतरण,
ट्रांसम्यूटेशन।
हाँ,
अरे ये तो वही बात हुई जो कीमियागर करना चाहते थे।
हाँ, एक तत्व को दूसरे में बदलना, अब ये सच हो गया था। पर ये केमिकल नहीं, न्यूक्लियर प्रोसेस था। इसने साबित किया कि तत्व अविभाज्य या अविनाशी नहीं है।
और फिर एटम के अंदर भी झांकने का मौका मिला।
हाँ, पता चला कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। इसी से तत्व की एक और ज्यादा फंडामेंटल परिभाषा आई,
जो परमाणु भार पर नहीं थी।
नहीं, वो थी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, जेड पर।
परमाणु संख्या यानी
प्रोटॉन की संख्या।
बिल्कुल, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, कार्बन में 6, यही नंबर तत्व की असली पहचान है। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स ने समझाया कि इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज तय करता है।
समझ गया। तो हमने देखा तत्व कहाँ से आए, कैसे परिभाषा बदली, कैसे उन्हें व्यवस्थित किया गया, पर क्या इंसान भी तत्व बना सकता है? और इन सब का आज क्या मतलब है हमारे लिए? हाँ, प्रकृति में तो यूरेनियम 92 सबसे भारी तत्व है जो मिलता है, लेकिन लैब में पार्टिकल एक्सेलरेटर्स,
कण त्वरक,
हाँ, उनसे यूरेनियम से भी भारी तत्व बनाए जा सकते हैं। ट्रांस यूरेनिक तत्व, ग्लेन सीबॉर्ग जैसे साइंटिस्ट ने प्लूटोनियम, अमेरिसियम कई बनाए।
क्या वो टिकते हैं, स्टेबल होते हैं?
ज्यादातर नहीं, ये सुपर हैवी तत्व बनते ही टूट जाते हैं।
हाँ।
सेकंड के करोड़वें हिस्से में शायद। वैज्ञानिक एक स्थिरता के द्वीप की तलाश में है, मतलब शायद कोई ऐसा भारी तत्व मिल जाए जो ज्यादा देर टिके, पर यह भी थियोरी है।
और ये कि कुछ तत्व बहुत हैं, कुछ बहुत कम, इसका क्या असर पड़ता है?
इसके पीछे कॉस्मिक कारण भी हैं और जमीनी भी। तारे कुछ तत्व ज्यादा बनाते हैं, कुछ कम।
हाँ।
फिर धरती पर जियोलॉजी से कहीं वो जमा हो गए, कहीं बिखर गए।
और ये हमारे लिए जरूरी है?
बहुत ज्यादा। जीवन के लिए कुछ तत्व जरूरी हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, सीओन पीएस जिन्हें कहते हैं। और हमारी आज की टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, बैटरी, ग्रीन एनर्जी, वो सब कुछ खास दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर टिकी है।
ओ, तो मतलब इनकी सप्लाई, माइनिंग, रिसाइकलिंग, ये सब बड़े मुद्दे बन गए हैं अब।
बिल्कुल, ये फंडामेंटल साइंस सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, इकोनॉमी और भविष्य से जुड़ी है।
तो इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बातें या संदेश हैं जो हम याद रख सकते हैं?
मेरे लिए तो सबसे पहला और सबसे गहरा है वो कॉस्मिक कनेक्शन, ये जानना कि हम सचमुच तारों की धूल हैं। ये हमें यूनिवर्स से जोड़ता है, शायद थोड़ा विनम्र भी बनाता है।
ये बात तो है। दूसरा शायद ये कि विज्ञान कैसे बदलता है, विकसित होता है। तत्व की परिभाषा ही कितनी बार बदली, ये दिखाता है कि विज्ञान कोई आखिरी सच नहीं, बल्कि समझने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है।
चलिए, कहा। और तीसरा है व्यवस्था की ताकत। पीरियोडिक टेबल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चीजों को सही ढंग से क्लासिफाई करने से न सिर्फ समझना आसान होता है, बल्कि अनदेखे की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ये सिर्फ साइंस में नहीं, हर जगह काम आता है।
और चौथा, जिसकी बात अभी हुई, व्यवहारिक महत्व। ये जानना कि हमारे फोन में, हमारी बैटरी में कौन से तत्व हैं, वो कहाँ से आते हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, ये हमें जागरूक बनाता है। खासकर भारत जैसे देश के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए ये समझ जरूरी है।
किताब में कुछ आइडियाज भी बहुत यादगार हैं, जैसे वो कहते हैं।
हाँ, जैसे एक था कि हम तारों की चीजों से बने हैं और एक तरह से हम परमाणु कचरा हैं। ये कचरा शब्द थोड़ा,
हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर यहाँ मतलब गहरा है। ये हमारे कॉस्मिक कनेक्शन को तो दिखाता ही है, पर ये भी बताता है कि हमारे शरीर के भारी तत्व असल में तारों की एनर्जी बनाने की प्रक्रिया के बाय प्रोडक्ट है, जैसे किसी फैक्ट्री का बचा हुआ माल। ये एक तरह से कॉस्मिक रिसाइकलिंग है।
दिलचस्प नजरिया। एक और था कि आवर्त सारणी शायद विज्ञान का सबसे बड़ा नक्शा है, पदार्थ का नक्शा।
हाँ, ये उसकी अहमियत बताता है। वो सिर्फ लिस्ट नहीं, गाइड है। जैसे नक्शा रास्ता दिखाता है, वैसे ही पीरियोडिक टेबल हमें केमिकल बिहेवियर समझने में, नए कंपाउंड सोचने में मदद करती है।
और वो तीसरा कि हर तत्व की एक कहानी है और हर कहानी दूसरी से जुड़ी है।
ये फिलिप बॉल के लिखने का स्टाइल है। वो तत्वों को अलग थलग नहीं देखते, उनकी कहानियां कैसे बने, कैसे खोजे गए, क्या करते हैं, सब आपस में जुड़ी हैं। इससे साइंस बोझ नहीं, एक दिलचस्प कहानी बन जाती है।
तो ये सब जानकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है, कैसे इस्तेमाल करें इसे?
सबसे पहला तो शायद नजरिया बदल सकता है। पानी पीते हुए सोचें कि हाइड्रोजन बिग बैंग का है, ऑक्सीजन तारों का। फोन देखते हुए सोचें कि इसमें कितने तत्व कितनी दूर से आए हैं। दुनिया ज्यादा कनेक्टेड लगने लगती है।
हाँ, ये तो है। दूसरा, हमारी वैज्ञानिक समझ बेहतर होती है जब हम बैटरी, नए मटेरियल या रिसोर्स की कमी के बारे में सुनते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं।
और तीसरा, ये जिज्ञासा जगा सकता है, खासकर बच्चों में। पीरियोडिक टेबल का डर कम हो सकता है जब कहानी पता चले। विज्ञान रटना नहीं, खोजना है।
सही। तो आखिर में आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे यादगार बात क्या रही इस चर्चा से?
मेरे लिए शायद मेंडलीव की वो भविष्यवाणी करने की ताकत। ये सोचना कि कैसे पैटर्न को समझकर आप अनदेखे के बारे में इतना सटीक बता सकते हैं, ये साइंटिफिक मेथड की पावर दिखाता है, और ये भी कि कैसे ये बेसिक साइंस आज की बड़ी चुनौतियों से जुड़ी है।
और मेरे लिए शायद ये जानना कि तत्व जैसा बेसिक आइडिया खुद कितना इवॉल्व हुआ है, हमारी समझ कितनी गहरी हुई है वक्त के साथ। और हाँ, वो कॉस्मिक कनेक्शन वाली बात कि हम सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, ये सोच हमेशा साथ रहती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।